ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। व्हाई यू आर हैप्पी टू सी मी? व्हाई? नो रीजन? आई हैव अ रीजन। यू आर सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद सो मच हैप्पीनेस। व्हाई यू आर हैप्पी? Okay, giving yogi, because topic is just, so we are happy. One question, I'm not going to take your test. Aap Hindi mein kar rahe hain session, English mein ho raha hai kaisa? Hindi, English. That is what is called English. Hindi and English mix, it is English. Okay, so let us start English. तो सबसे पहले ये अगर मेरे घूमने से इको तो नहीं होगा, ठीक चलेगा? तो जैसा कि ये वाली इतनी अच्छी जो मीटिंग आप लोग हर साल करते हैं, बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब की और पूरी जो टीम की मेहनत है और जो भी सब मेंबर्स हैं उनकी तो ऑथेंटिक पार्टिसिपेशन है, उसकी तो कमाल है। बाकी इस बार जो इन्होंने लक्ष्य रखा था कि लिविंग यज्ञ के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला प्रश्न आता है यज्ञ की परिभाषा क्या है। कोई क्वेश्चन नहीं है हमको, हम कोई डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, हम यज्ञ में रह रहे हैं। लेकिन अगर हमने से, क्योंकि स्पार्क ग्रुप है ना, तो स्पार्क ग्रुप माना हु इज एबल टू डिफाइन एवरीथिंग परफेक्टली, एक्चुअली साइंटिफिकली, एक्यूरेटली। तो और हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कुछ अपना, जिसको कहते हैं ना, मनन करते हैं ना, तो मनन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बेसिक ज्ञान को चूहे की तरह से कुतर कुतर कतर कतर कर दो और कुछ पता ही नहीं पड़े। मनन माना इस रूप से ज्ञान को सोचें कि जो बाबा की उसमें इनविजिबल विजडम है वो शब्दों के रूप में, क्योंकि भाषा मतलब फिलोलॉजी, एटिमोलॉजी, उसके शब्द होते हैं, टर्म्स होती हैं, और वो बाबा तो सब यूज नहीं करेंगे ना, हम बच्चों को वो प्रॉपर टर्म्स को यूज करके शेयर करना पड़ता है विश्व के साथ। तो जो कुछ भी मुरली में आज तक बाबा ने यज्ञ को टाइटल्स दिए हैं, तो यज्ञ क्या है, यज्ञ के कौन कौन से रूप बाबा ने हमको दिखाए हैं, समझाए हैं और हमने अनुभव किए हैं। आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस, कुछ एक और माइक देना पड़ेगा ना, हैंड माइक एक और दिन। जब तक आए मैं रिपीट करती हूँ, अपने ही तन मन धन से ऐसी एक्टिविटी करें जो परमात्मा खुश हो जाए, उस एक्टिविटी को यज्ञ कहते हैं। गिव अ बिग हैंड टू हिम। देखिए इतनी अच्छी तालियां नहीं बोली है, मतलब अभी कुछ यज्ञ क्या है, जस्ट रेज हैंड। ठीक,
राजस्व हमें वो बात बताता है कि हमें राजा ही लेनी है, राजा ही लेनी है। दूसरा अश्व में यज्ञ वो बताता है कि हमें माया से युद्ध करना है। तीसरा ये अविनाशी ज्ञान रिपीट किया जाता है हम आत्मा रुद्रों को और रुद्र परमपिता परमात्मा शिव द्वारा। तो ये पूरी परिभाषा नाम से ही फलीभूत होती है। ओम शांति।
थैंक यू। एनीवन एल्स? यस प्लीज ब्रदर स्टैंड अप। यू वांट टू कम अहेड, कम अहेड। ओके, यू विल स्पीक लाउड। यज्ञ एक ज्वाला है, वेरी गुड। अभी ये बात, ये देखिए जो टर्म है अग्नि या ज्वाला, अभी जैसे यज्ञ माना ही अग्नि पैदा करना, लेकिन कैसे करेंगे वो प्रॉब्लम बात की है। वो ज्वाला है जिससे कि क्या बोला आगे, कमियों को स्वाहा करते। गुड, एनीवन एल्स? जी एक दो और। यज्ञ माना समर्पण करना। ओके गुड जी,
permanent transformation of the soul to the highest elevated stage by spark of meditation.
Good. ये है यज्ञ. ठीक है. Please raise hand and then speak.
Right.
बोलिए.
संगठित रूप में जो भी क्रिएटिव कार्य किया जाए वो यज्ञ है.
जो भी क्रिएटिव कार्य किया जाए वो यज्ञ है. अभी आप देख रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है या सही है या हम सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, बस हम सुन रहे हैं. ठीक है जी. एक और एक सेकेंड.
इसलिए भी यज्ञ कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान से पूरी दुनिया स्वाह होती है, इसलिए यज्ञ कहते हैं.
इसमें पूरी दुनिया स्वाह होती है. थैंक यू. हमारे विकारों को स्वाह करने की क्रिया हम करते हैं, उस क्रिया को यज्ञ कहते हैं. ठीक है. यज्ञवत है. गुड. ठीक है.
हेलो.
एक और.
यज्ञ मीन्स योग फॉर ज्ञान, योग और ज्ञान से स्वाहा करना.
यज्ञ माना
या फॉर योग या फॉर ज्ञान.
या मतलब या
योग. योग
या ओ होता तो योग होता. हाँ. या आ है तो याद है. ठीक है. ज्ञान. ओके. यस. लास्ट. इसमें तो आपने वो सारा प्रोसेस बता दिया और अरेंजमेंट बता दिया. ठीक है. गुड. माइक कहाँ चला गया? एक सेकेंड. माइक कहाँ चला गया? माइक दीजिए. आपका क्योंकि पंखे के कारण कम सुनाई दे रहा है. जस्ट वंस मोर.
यज्ञाने पर्पजली एखाने विषय की संकल्पना पूर्ण करने के लिए वो अभियान चालू किया जाता है, उसमें ज्ञान यज्ञ रहता है. जैसा कि अपने दो दिन से ये स्पार्क यज्ञ ज्ञान यज्ञ चालू है, ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ रहते हैं.
तो ये भी यज्ञ चल रहा है. गुड. ओके. लास्ट. सब आत्माएं मिलके विश्व पवित्र आत्माएं. वेरी गुड. ये अभी दो बात, ज्वाला और पवित्रता और मिशन और संगठन. कोई एक व्यक्ति बैठ के अपनी आग जला के यज्ञ नहीं करता है. ज्वाला होती है, सेक्रेटनेस होती है, कलेक्टिव होता है, संगठन होता है और मिशन होता है. अर्थात कोई ना कोई कर्तव्य की पूर्ति के लिए, अर्थात इच्छा की पूर्ति के लिए, कार्य की पूर्ति के लिए किया जाता है. वेरी गुड. थैंक यू. अभी दूसरी बात यह है कि हम जो सब यहां पर बैठे हैं, हमारा जो नाम है ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं. ब्रह्मा कुमारीज हैं. अब यज्ञ जो है जहां जिसमें हम बैठे हैं, अभी मैंने आपको ये नहीं बोला कि क्या डेफिनेशन इनमें से पूरी है सही है. हमको वही काम करना है आज यहां बैठ करके. वो सब जो बाबा ने हमें मुरलियों में बताया हुआ है उसको हम एक एक करके अपने सामने इमर्ज करेंगे. तो हम जब सब आए यहां पर और आज का दिन, उसमें कोई ना कोई तो ड्यूरेशन है. अब जैसे बहन जी ने बताया कि मैं 8 साल की उम्र में आई थी यहां पर. माता पिता लेके आए थे, मैं नहीं आई थी, माता पिता लेके आए थे. और कॉन्शियसली 33 साल से मैं यहां हूं, सेवा कर रहे हैं. अब आप लोग भी आए थे और अब इतना समय हो गया. अच्छा, अभी मैं जो प्रश्न पूछूंगी, आप में से कौन है जो यहां पर 1 साल से लेकर 5 साल के बीच के ड्यूरेशन में आए? ये 1 साल और ये 5 साल. 5 साल हो गया वो इस यज्ञ के संपर्क में संबंध में आए हैं. कैन यू जस्ट स्टैंड अप इफ यू डोंट माइंड? क्या आप खड़े हो सकते हैं अगर थकान नहीं हो तो? ठीक है, आप चाहें तो देखिए उनको, देख सकते हैं, परिचय लीजिए उनका भी. अच्छा, ये सब हैं जो 1 से 5 साल तक हैं. ठीक है, आप ताली नहीं बजाएंगे क्या उनके लिए? दूसरा, सो दिस इज 5 now 5+5+10 10 साल तक. गुड, वेलकम. देखिए ये थोड़ा ज्यादा है. गुड, थैंक यू, वेलकम. अभी 10+2 15 10+2 15. ये थोड़े और भी उतने ही हैं जितने वो पहले वाले हैं. ठीक है, गुड, वेलकम. बहुत आप ऐसे बजा रहे हैं कि पता नहीं क्यों बजाना. आपने कहा ना खुशी हो रही है देख के. तो चल, आप लोगों का वेलकम सेशन तो हो गया है शायद, इसलिए नहीं कर रहे हैं ना. मैंने नहीं देखा तो मुझे अच्छा लग रहा है. ओके, एंड देन इट वॉज 20 20+15 हुआ ना, 15+ then till 20, 20 including. Okay. Good. Sit down. Thank you. And now 20+25. ये भी ज्यादा है, बहुत अच्छे. अच्छा, अभी जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे भाई बीच में है और वो जो आ सके जा सके कोई बात नहीं, ऐसा ही सेट कर लेंगे. तो ये 20+ till 25. थैंक यू. 25+30 till 30. गुड, वेलकम. अच्छा, नाउ 30+35. गुड. ओके, वो गैलरी में कोई भी साल वाले नहीं है, वो सिर्फ देखने वाले हैं क्या? Nobody is standing there. अच्छा, ना किसी ने हाथ खड़ा किया, ना खड़े हुए किया उधर से. ओके, ठीक है. ये गैलरी भी स्पार्क वाले हैं ना? नहीं, इन्वेस्टिगेटर तो नहीं है ना. अच्छा, तो ये हो गया 35 तक. So now 35 से कितने भी साल ऊपर नो प्रॉब्लम, लेकिन 35 से ऊपर 40 45 50 60 70 80. गुड, ऐसे करिए, ऐसे दिखाइए. डिड यू नोट? पहले 5 वालों में ताली बजी नहीं, दूसरे वाले में बजवानी पड़ी, तीसरे वाले में ठीक है सो सो, और ये लास्ट वाले में क्या दिल से ताली बजी. क्यों? क्योंकि जहां पर हम आए हैं, ये जो स्थान है, तो जितना ज्यादा हम यहां पर हैं उसने हमको भरपूर कर दिया है. तो वो भरपूरता जो हमारी है, दैट इज इन्फेक्शियस, कंटेजियस. बोलना नहीं पड़ता है कि मैं 30 साल से हूं, 25 साल से हूं. वो मैं भर जो गई वो वाइब्रेट करता है. इन्होंने नहीं कहा हमारे लिए ताली बजाओ. तो इसलिए, और भरपूर माना जमा होना, तो इसलिए सबसे पहला जो बाबा ने यज्ञ को टाइटल दिया है और उस प्रमाण यज्ञ का जो रूप चल रहा है, जो हमें भर रहा है, जिससे हम ये कदम 1 साल 10 साल 40 साल तक पहुंचते जा रहे हैं, वो रूप है कमाई का रूप, सोर्स ऑफ इनकम. जो ज्ञान देकर के ये जो सेटअप बनाई है, ये सेटअप का नाम है विद्यालय, यूनिवर्सिटी, स्कूल, विद्यालय, पाठशाला. तो यज्ञ सबसे पहले पाठशाला है, क्योंकि पाठशाला में यू आर नॉट स्टैटिक। ऐसा नहीं होता है। अभी इससे पहले मैं एक प्रश्न और पूछती हूँ, अभी जो पिछले वाले से पूछती हूँ, जो 35 से ऊपर वाले से हैं, जब आप आए थे कैसे थे और अब आप हो कैसे हो, बता सकते हैं? बताइए। ओ माय गॉड, शब्द ही नहीं है। हम कैसे आए थे? जो बाबा कहते हैं ना, यहाँ पर टोकरियां, गंदगी, शूद्र, विकारी, विष्ठा का कीड़ा, वो सारे टाइटल आप इमर्ज करिए, और अभी हो माय गॉड, है ना? अभी क्या है हमें मालूम है हम अभी क्या है। और ये जो है इसको कहते हैं बीइंग पार्ट ऑफ लिविंग यज्ञ, लिविंग, मूविंग, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग, डेवलपिंग। तो यज्ञ मेरे साथ साथ वो भी चल रहा है, मैं भी चल रही हूं, हम दोनों चल रहे हैं। तो ये जो यज्ञ का रूप है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, एम्पावर कर रहा है और मजबूत कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ये जो है फ्लेक्सिबल या जिसको कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द यज्ञ। बट जब आप आए थे, अब मैं पहले साल वालों के पास आती हूँ, आप लोग जब आए थे ज्ञान में, जो 1 से 5 साल वाले हैं उनमें से कोई हाथ खड़ा करे, उस समय आपको क्या बताया गया इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का, इस विद्यालय का हेडक्वार्टर कौन सा है, क्या बताया गया था, आपकी टीचर ने आपको क्या बताया था सेंटर पर? जी, माउंट आबू, ये बताया था ना? अच्छा ठीक है। 40 साल पहले क्या बताया था? तो लिविंग मतलब मूविंग, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग। तो एक एस्पेक्ट यज्ञ का है जो कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग, बिकॉज इट इज स्टडी, पढ़ाई हो रही है ना, तो हम ग्रो रहे हैं। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो क्या कहेंगे, नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, स्टैटिक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टैटिक में भी एक माइनस है और नॉन लिविंग तो नॉन लिविंग ही है, कांस्टेंट। बट कांस्टेंट जो है वो कोई भी स्थूल चीज जो है, वो स्थूल चीज के लिए, अब जैसे मैं कहूंगी मेरी माँ के साथ मेरे कांस्टेंट रिलेशनशिप है, थोड़ा अजीब लगता है ना, है ना? तो इसलिए अभी इस सारी बातचीत के अंदर में हम देखेंगे शब्दों का क्या महत्व है, क्योंकि शब्द जो है वो हमारी समझ को एक नेत्र देते हैं, जिसको बाबा ने टाइटल दिया है तीसरा नेत्र। तो शब्दों के द्वारा देखना, तो वो अनुभव इतना एक्यूरेट हो जो मुझे दिखाई दे रहा है। और जब अभी मैं आपको कह रही हूँ हम गुलाब जामुन खाएंगे आज, ठीक है, खा लेंगे गुलाब जामुन, अब मैं आपको वो ऐसे बताऊं, वो आपको दिखाऊं, वो दिखाई पड़े कि आप अभी गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो तीसरा नेत्र मीन्स, क्योंकि नेत्र द्वारा आप बोलते नहीं है, नेत्र द्वारा देखते हैं और दिखाते हैं। तो ज्ञान को यज्ञ ने हमें इस प्रकार से दिया है जो हम उसको देखते हैं, हम 5000 साल की स्टोरी को देखते हैं, हम सतयुग को देखते हैं, हम आगे आने वाले परिवर्तन को देखते हैं इतना अच्छे तरह से। ओके, नाउ स्टॉप हियर। तो अब ये जो रूप है यज्ञ का, जो यही है हेडक्वार्टर यही है, और जो स्थापना का कार्य है वो किसके द्वारा हुआ? स्वर्ग की स्थापना का कार्य जो है परमात्मा कितने साल से कर रहे हैं? 80 साल हो गए, और 80 साल से किसके द्वारा कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा तो चले गए, ब्रह्मा बाबा तो चले गए हैं ही नहीं ना, कहाँ है ब्रह्मा बाबा? तो 1969 तक भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा बाबा द्वारा हो रहा था, 1969 के बाद भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा हो रहा है, तो ये भी स्टेबल है। इसका लिविंग का मतलब ये नहीं, इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट ये नहीं है कि वो पहले स्थापना किसी और के द्वारा हुई, अभी थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको हम कहते हैं सेक्रेड एस्पेक्ट्स ऑफ यज्ञ, सेक्रेड। ये है प्रोग्रेसिव, जो हमें दे रहा है, भर रहा है, रोज अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, ज्ञान मिल रहा है, नई मिल रहा है, नई नई बातें मिल रही हैं। सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग यज्ञ। और जो बेसिक फंडामेंट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक फिलॉसफी है, दिस इज नॉट स्टैंडिंग, दिस इज नॉट स्टैग्नेंट, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, जस्ट इज सेक्रेड, सेक्रेड है। तो सेक्रेड माना कि हम आज के जमाने में खड़े होकर के बैठ के ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्या इस फिलॉसफी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्या ये अभी मान लीजिए जो कार्य हो रहा है, अभी दुनिया बदल रही है, उसके हिसाब से कुछ बदलेगा नहीं क्या? तो ये जो हमारे दुनिया हमें प्रश्न जब करे, या हम में से कोई बैठ करके ये सोचने लग जाए कि काफी टाइम हो गया ऐसा चल रहा है, तो कुछ तो बदलना चाहिए ना, कुछ तो खिड़कियां खुले, वेंटिलेशन हो, स्मेल हो गई है, स्टेग्नेंट हो गया है, तो ये सब जो है तब ही संकल्प आ सकता है जब हमने इन दोनों बातों को महसूस नहीं किया है। नाउ आपके जो माता पिता हैं, उन्होंने जब आपको मां ने, दादी ने सूर्य का परिचय दिया था, उस समय सूर्य का जो फोटोग्राफ था 50 साल पहले, यहाँ पर सबसे बड़ी फिजिकल एज वाले कौन बैठे हैं? अबव 70 समबड़ी? अच्छा सेवन अबव 75? ओके 80 एंड अबव 80? ओ प्लीज स्टैंड अप, यू अंडरस्टैंड हिंदी? अच्छा जस्ट स्टैंड अप, 80 ठीक है। अच्छा अभी 18 साल के कोई बैठे हैं? 18 ईयर्स? Come inside. So 18 years and 80 years. तो जो आपने सूर्य का फोटोग्राफ देखा था, मम्मी ने दिखाया, दादी ने दिखाया और आपने, वो दोनों सूर्य के फोटोग्राफ्स एक है या अलग अलग है? एक है। तो ये तो कितना बोरिंग है, इतना साल हो गया बदलता ही नहीं है, कुछ तो बदला, परिवर्तन तो हो ना कुछ। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सिट डाउन। सो देह अभिमान में हम सब परिवर्तन जो शब्द है, जिसको हम कहते हैं नवीनता, वो नवीनता माना अभी अभी जैसे ये ना, ये यहां रखा है और अब इसको यहां से वहां रख देंगे नवीनता हो जाएगी, ये इस वाली नवीनता की जो हंटिंग हम करते हैं उसके कारण हम सेक्रेट को भी टच करते हैं बदलने के लिए। सूर्य सेक्रेट है तो उसको, उसमें हर समय नयापन देखने के लिए मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। दादी जी ने नहीं देखा था कि ये बेचारा सूर्य इतनी सारी एनर्जी दे सकता है जो सोलर एनर्जी के रूप में बैटरी से कैप्चर करके काम कर सकते हैं। तो ये नवीनता है ना। सो यू कांट टच द सोर्स टू मेक इट न्यू, बट यू कैन यूज द सोर्स टू क्रिएट न्यू। ये लिविंग याज्ञ है। आप यज्ञ को टच नहीं कर सकते परिवर्तन करने के लिए, कि थोड़ा बदलाव तो आए, काफी जमाना बदल गया है, लेकिन आप यज्ञ से जो मिल रहा है उसको आप अपनी समझ से, अपनी योग की शक्ति से, परमात्मा के साथ प्यार से कैप्चर करके उससे ज्यादा प्राप्ति कर सकते। ये है लिविंग याज्ञ। नाउ हम जब मार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट में, बहने तो सेंटर वाली नहीं जाती होंगी, सेंटर वाली बहने कितने बैठे हैं, सेंटर वासी। अच्छा, तो आप लोग शॉपिंग पे जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, सामान तो लेना पड़ता है, टोली बनानी है, ब्रह्मा भोजन बनाना है। तो अब हम जो शॉपिंग करने जाते हैं, जो बहुत ज्यादा जाते हैं आजकल के सुपरमार्केट सिस्टम में, तो एवरी प्रोडक्ट शुड कम विद द लाइफ स्पैन, जिसको कहते हैं ना उसकी आयु, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट। जो कुछ भी रचा जाता है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। अभी प्रश्न आता है, अब फिर मैं इस पे आती हूँ, प्रश्न आता है यज्ञ की रचना कब हुई 36 में, यज्ञ की एक्सपायरी डेट कौन सी है? जो कुछ भी रचा जाता है उसकी एक्सपायरी होती है, और उसकी जो होती है ना, बेस्ट बिफोर, हैव यू सीन बेस्ट बिफोर। तो ये जो है ना 36 में, क्योंकि ये अभी 40 साल हो गए हैं, 60 तक सब नॉर्मल था, 80 तक नॉर्मल था, अभी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई हैं, अभी एक्सपायरी हो गई है, अभी कुछ इसमें बदलाव लाना चाहिए, नया सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा। इट वॉज, यज्ञ वॉज बेस्ट बिफोर, यज्ञ वॉज बेस्ट बिफोर, क्वेश्चन डजंट अराइज, प्रश्न नहीं उठता है, बेस्ट था, बेस्ट है, बेस्ट रहेगा ना। देखो ना, दादी हमेशा कहती है, जो बाबा थे खिलाते थे, गिट्टी खिलाते थे, हक करते थे, मामा गोदी में लेती थी, अब तो कोई दृष्टि भी नहीं देता है, गिट्टी नहीं खिलाता है। यज्ञ वॉज बेस्ट बिफोर, यज्ञ वॉज बेस्ट बिफोर 1969, आफ्टर दैट इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा है क्यों? क्योंकि तब देखो एक ऐसा हो रहा है, ये हमको आज करेक्ट करना है, क्योंकि चाहे हमें इस रूप से दिखाया जा रहा है कि ऐसा था, लेकिन वो ऐसा था किसके कारण से था, वो कारण यहां नहीं था, वो यज्ञ का रचयिता कौन है, कुछ पता नहीं किसने ये यज्ञ रच दिया, यज्ञ का रचयिता कौन है, एक शिव बाबा यज्ञ के। अच्छा, शिव बाबा की एक्सपायरी डेट कौन सी है? तो जब रचयिता बियॉन्ड एक्सपायरी है, रचयिता इज डायनामिक, रचयिता सागर है, सागर की एक्सपायरी डेट कौन सी होती है? सागर डायनामिक होता है, लिविंग होता है। एक ऐसा टाइम बताओ जिसमें सागर में वेव्स होती नहीं है। कभी आप बैठे रहो सारा दिन, मैं पकड़ूंगी सागर को जब उसमें एक भी वेव ना हो। तो जब रचयिता लिविंग है, डायनामिक है, मूविंग है, तो उस रचयिता की जो रचना है धरती पर वो कितनी डायनामिक होगी, कितनी अनलिमिटेड होगी। तो सागर की जो रचना है, ये जो यज्ञ है, ये भी बेहद है और इसकी इसकी भी एक्सपायरी डेट नहीं है और इसका बेस्ट बिफोर नहीं है, रचना है। अच्छा फिर प्रश्न उठते क्यों नहीं एक्सपायरी डेट जब रचना है तो, क्योंकि एनीथिंग क्रिएटेड इज डेफिनेटली डिस्ट्रॉयड एंड डिग्रेड्स, तो ये भी समझना जरूरी है जिससे मेरी जो बुद्धि है वो इसको देख सके और दिखा सके। तो जब हम बाबा की याद में बैठे तो कौन सा गीत चला था, इकट्ठा गाइए सब, वो दिन कितने प्यारे थे, पक्का पक्का एक बार फिर, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे, बाबा जो बाबा था, जिसकी वजह से यज्ञ था, जिसकी वजह से ये सब रचना हुई, वो अब भी हमारे साथ है, तो ये लिविंग यज्ञ है, क्योंकि वो लिविंग है, वो साथ है, वो चला रहा है। फाइनल क्वेश्चन, ये कन्वर्सेशन यहाँ की है इसलिए वहां नहीं हो रही है, अब यहाँ की कन्वर्सेशन पूरी करके फिर ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, किसी भी चीज की वो जो शेल्फ लाइफ होती है, आप पनीर घर में बनाते हैं या मार्केट से खरीदते हैं, सब लोग एक सेंटर पर रहने वाले नहीं, घर में रहने वाले भी बाजार से खरीदते हैं ना, बाजार से खरीदते हैं, नहीं कोई हर्जा नहीं है लेकिन देखना पड़ेगा कि अच्छा कहाँ से मिलता है, वो नहीं तो उसमें कुछ मिक्स करेंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, तो ठीक है। तो पनीर की दूध की चीज की ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम बेस्ट शेल्फ लाइफ होती है। अभी यज्ञ के अंदर अभी हमने सिर्फ एक रूप लिया है, बाकी तो यज्ञ के रूप लिए नहीं, अभी विद्यालय की ही बात कर रहे हैं। 1936 में हमें प्रोडक्ट्स, ज्ञान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिले, हमने उससे डिशेस बनाई, हमें ज्ञान मिला आप आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, हमने उससे डिश क्या बनाई, खुशी की डिश बनाई, शक्ति की डिश बनाई, आनंद की डिश बनाई। अब ये जो थी बातें 1936 के लिए थी, या वो 2016 के लिए भी ये बातें, शेल्फ लाइफ खत्म नहीं हुई है क्या इस ज्ञान की? व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ नॉलेज गिवन इन ब्रह्मा कुमारीज, बताएं? अविनाशी है, तो ये हमको अंदर में पता है, लेकिन आज जब हमारे पास में कोई यूथ जनरेशन आके ये कहते हैं, मम्मी ये तो आपके पुराने जमाने की बातें हैं जब आप ज्ञान में चले थे, आज ऐसी कोई ज्ञान नहीं सुनता है, आज आप कहेंगे आत्मा हो कहेगा, आज उनको कोई और बातें सुनाइए, तो फिर आप क्या करेंगे, सिलेबस बदल देंगे, चाहे आप ऐसे सुनाएंगे चाहे आप ऐसे सुनाएंगे चाहे आप उल्टा लटक के सुनाएंगे, सुनाएंगे तो क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो अविनाशी है, उसकी शेल्फ लाइफ नो लिमिट। अच्छा अभी जो है ये यज्ञ भारत से बाहर कितने देशों में गया है, 135 सुना है, 40 सुना है, कोई तो 60 भी बोल रहा है, लगभग अभी कह सकते हैं लगभग। देखिए जब भी डाटा की बात आए, फिगर्स की बात आए, स्पार्क के मेंबर्स को कम से कम ये आदत डालनी चाहिए, कभी भी आप ऐसे नहीं बोले 140, लगभग, तो सेफ रहेंगे। क्यों हम इतनी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें गलत इन्फॉर्मेशन देने की? क्या पता वो कोई बंद हो गया हो सेंटर बीच में जब तक मेरे को बता रहे हूँ। तो लगभग 140 देशों में जा चुका है। तो 140 देशों में जो यज्ञ का ज्ञान है वो अमेरिका, वो 5 कॉन्टिनेंट्स में जा चुका है। तो क्या 5 कॉन्टिनेंट में जो ज्ञान है उसका नाम है मुरली? सोर्स जो है वो है मुरली। तो इन 5 कॉन्टिनेंट में मुरली का क्या नाम है? अमेरिकन मुरली को क्या कहते हैं? कहाँ जा रहे हैं? मुरली सुनने जा रहे हैं। रशियंस क्या कहते हैं? कहाँ जा रहे हैं? मुरली सुनने जा रहे हैं। तो अभी हम यहां से आगे बढ़ेंगे कि जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, कितने भी ब्राह्मण 140 देशों के, कितने 1,00,000 से भी कितने ज्यादा हो गए ब्राह्मण अभी बताइए? लगभग 10,00,000 से ऊपर ब्राह्मण हो गए, ये ठीक है। ऊपर कितना ऊपर वो आप अपने आप पूछ लो शशि दीदी से। तो ये जो संख्या है ये कोई खेल नहीं है। अभी 2 लोग भी जब होते हैं गाड़ी के अंदर, अभी हम आ रहे थे, ऊपर से आते हैं नीचे से जाते हैं, तो एक गाड़ी में जो बैठा है उसको ठंड लग रही है। वो कहता है कि मुझे 25 तक रखना है रूम टेम्परेचर ये गाड़ी का अंदर का, और मुझे गर्मी लग रही है, और मैं कहती हूँ 19 कर दो। कहानी मैं बता रही हूँ। अच्छा अब किसकी बात सुने, किसकी बात राइट है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है? दोनों लग रहे हैं करे, क्योंकि गाड़ी एक ही है, कोई ऊपर कंपार्टमेंट तो है नहीं। तो या फिर ऐसे करे, तो दिस इज व्हाट इज यज्ञ। यज्ञ इज एन अरेंजमेंट फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, डिफरेंट बिलीफ। कोई यहाँ पर सारे कोई ये हिंदू धर्म वाले तो नहीं है, कोई मुस्लिम पहले समझते होंगे, कोई सिख समझते होंगे, कोई ज्यूइश फेथ के होंगे। तो यज्ञ इज अ सिस्टम अरेंजमेंट टू मेक एवरीवन मूव टुगेदर एक दिशा में ले जाने के लिए। तो इसलिए मुरली जो है, क्योंकि हम सब वो मुरली पकड़ के चल रहे हैं, तो मुरली इस कारण से इस यज्ञ का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। हमें कोई भी बात, अच्छा 19 करना है या 25 करना है, चलो मुरली में देख लेते हैं बाबा क्या कहता है। तो बाबा ये नहीं कहता है कि 19 टेम्परेचर रखो 25 रखो, बाबा कहते झगड़ा मत करो। ये तो है ना, समझ गए ना? तो कई बार हम अभी हम देखेंगे कि हम कहां गलतियां करते हैं, जिसके कारण से प्रश्न उठता है कि ये चेंज करो सब। तो हम कह देते हैं, मैं कहती हूँ मुझे गर्मी लग रही है, और ये, और वो कहता है मैंने कहा ना श्रीमत है, बस अब चुप करके बैठ रहो, जैसे श्रीमत है चलो। क्या 25 तक टेम्परेचर रखना श्रीमत है क्या? कौन सी मुरली में बाबा ने कहा है? तो श्रीमत क्या है? तो श्रीमत जो है वो भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न कल्चर और एक्टिविटी, नेशनैलिटी, बिलीफ सिस्टम, उसको एड्रेस करके श्रीमत नहीं दी है, श्रीमत आत्माएं जो एक घर की रहने वाली हैं, एक पिता की संतान हैं और एक ही उनका मूल धर्म जो है जिसको कहते हैं दिव्यता, वो दिव्यता की डिग्री जो है हमारी संपूर्ण है प्रारंभ में, और सभी आत्माएं जो है दिव्य हैं, किसी भी धर्म की न हो दिव्यता की डिग्री अलग अलग है। तो परमात्मा ने जो श्रीमत दी है या कि बनाया है वो आत्माओं को एड्रेस करके दी है। तो इसलिए हम कभी भी स्थूल बातों में, ये भाषा, ये सोफा है ना, थोड़ा प्लीज ऐसे रखिए, नहीं आपको नहीं कह रहे, वैसे कह रहे हैं, और वो आएंगे हमारे भाई हैं जो इस हॉल के इंचार्ज है ना, कहाँ चले गए हैं, सुरेश भाई, अगर वो आके कहते हैं, अभी मान लीजिए आप लोग यहाँ कितने हैं, लगभग 600 हैं, गिव हिम अ बिग हैंड, गुड, इसको कहते हैं फास्ट लर्निंग। तो अभी 600 में तो सब चेयर चाहिए, अभी इतनी कम हो गई, ऊपर भी बैठे यहाँ भी बैठे, लेकिन जब हम लोग आते हैं यहाँ पर, मतलब बाहर से जब भाई बहने आते हैं और 400 की सभा होती है, अब ये जो इतना इतना टाइट है और सारा सारा दिन बैठना है, एक हफ्ता बैठना है, इतना टाइट होता है, अब उस टाइटनेस में आधा लोग तो सोते रहते हैं, क्योंकि स्पेस, हम जो है शरीर जो है 5 तत्वों का बना है, उसमें से एक जो तत्व है वो है स्पेस। हम ज्यादा देर स्पेस के अभाव में नहीं रह सकते। अब ऐसे मजबूरी से बैठे हैं, लेकिन मन में आ रहा होगा कब खत्म हो हम भागें, क्योंकि देखिए स्पेस नहीं है जरा से भी, लेकिन बैठना तो पड़ेगा, लेकिन अंदर में आएगा भागो। लेकिन अगर स्पेस है, ऐसे अच्छे बैठे हैं, तो जितना भी आराम से बैठ जाओ। तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 400 हैं तो 200 चेयर्स बाहर हटा दो, और जिससे कि हम खुले होकर के बैठ सकें। तो क्या ये गलत है, क्या ये उनकी डिमांड गलत है? अभी प्रैक्टिकल बात आ रही है, क्योंकि हमको, हम लिविंग यज्ञ की बात कर रहे हैं। लिविंग माना सिस्टम जो लिविंग भी है, मूव भी कर रहा है, लेकिन उसमें स्मेल नहीं है, फ्रेग्रेंस है। अच्छा तो बताइए, चेयर्स हटानी है, हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? श्रीमत क्या कहती है? ये भाषा, ये डिसीजन या प्रोसेस जो है निर्णय लेने का, उसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रश्न फिर से आता है, तो क्या हम चेयर्स हटा सकते हैं? हटा सकते हैं? जो कहते हैं नहीं हटा सकते, हाथ खड़े करिए। कमाल है आपकी, परेशान हो रहे हैं लोग, टाइट हो रहा है, हेल्थ पे असर आता है, नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो, मतलब ऐसे खुले खुले लाइनें हो जाएंगी और खुशी से आप आओगे जाओगे। अभी देखिए, बीच वाले को वॉशरूम जाना है, अब वो बैठा रहेगा जब तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता। अब कितना करेंगे ऐसा? After all, its body is a living system and it wants everything. Drink करने को भी मन करता है और वॉशरूम जाने को भी मन करता है, खाने। तो अगर स्पेस ज्यादा होगी तो यू आर फ्री टू डू वॉट यू वॉन्ट। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। जो समझते नहीं कर सकते, अच्छा एक कारण बताइए क्यों नहीं कर, आपके हाल के अरेंजमेंट में तो नहीं है? हाँ खड़े हो जाइए। यू हैव टू एडजस्ट एवरीवेयर। देखो कितनी अच्छी बात कही है, मेरे पास में 10 कमरों का घर है उसमें सब में ताला लगा के मैं एक कमरे में रहती हूँ, एडजस्ट करती हूँ, वहीं सारा काम करती हूँ. तो इज द एडजस्टमेंट प्रॉपर टर्म यूज हियर, कि मुरली जो है वो हमको ये नहीं बताती है कि चेयर निकालनी है या नहीं निकालनी है, लेकिन वो जो निर्णय का प्रोसेस है उसमें हमें अपनी स्थिति कैसी रखनी है, और स्थिति रख करके हमें उस रिजल्ट तक पहुंचना है जिसमें हम दोनों अल्टीमेटली जो पार्टी चाहती है और जिस पार्टी को वो करना है हम दोनों संतुष्ट रहें. अर्थात जिसको हम कहते हैं लोक पसंद और मन पसंद. क्योंकि अगर हम मुरली की को रेफर कर रहे हैं कि बस श्रीमत है ना, टच नहीं करना चेयर्स को, लेकिन उससे बहुत से लोगों को घुटन हो रही है और बीमार हो रहे हैं, अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, जगह है तो क्यों नहीं उसको किया जाए. ठीक है, तो इसलिए लिविंग या केयर, अर्थात वो अरेंजमेंट, वो स्ट्रक्चर जो फ्रोजन नहीं है. यज्ञ जो है वो फ्रोजन सिस्टम इसमें नहीं है, स्टैटिक सिस्टम नहीं है. अर्थात उसमें ऐसी ऐसी चीजें जिससे सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए बना रहे और हम आगे चलते रहें, उसकी मार्जिन है. ऐसा नहीं जब ये हॉल बना था इसमें 600 के लिए स्थान बनाया गया था तो वो जो सोफे जहां लगे हैं वो 25 साल तक वहीं लगे रहेंगे. उस 25 साल में अगर कुछ दो प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें जाना है, कर सकते हैं, मार्जिन है. ऐसा नहीं कि मार्जिन नहीं है. अब मैं उस मार्जिन को प्रोवाइड करती हूं या नहीं वो अलग बात है. बाबा ने इसमें कोई बंदिश नहीं रखी. बाबा ने तो ये नहीं कहा है ना, टच मत करो, हिलाओ नहीं. समझ रहे हैं सब? तो इसलिए हम यज्ञ पर प्रश्न नहीं करते. यज्ञ और व्यक्ति सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है. यज्ञ सिस्टम है और व्यक्ति जो है, हम आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो कभी कभी हम अगर सुरेश भाई से झगड़ा करेंगे कि बस यज्ञ में तो ऐसे ही चल रहा है, वो तो कुछ सुनता नहीं है, वो तो कुछ करता नहीं. सुरेश भाई सुन तो नहीं रहे? बहुत अच्छे हैं वो सब करते हैं, जो भी कहा जाए सब करते हैं. इसलिए उन्हीं का ही उदाहरण दिया जाएगा क्योंकि वो सब सुन लेंगे तो भी ठीक है. तो ये जो हमारी भावना है और समझ है कि ये सेक्रेड है, यज्ञ का एक एक पीस सेक्रेड है, सोफा आता है, अगर हम उसको बार बार हटाते हैं, रखते हैं, उसकी जो आयु है कितनी कम हो जाएगी. अगर आप फ्रिज को एक जगह से हर साल हिलाते हैं तो उसकी आयु कितनी कम हो जाती है. अगर आपने एक जगह पर रख दिया थोड़ी आयु ठीक रहती है. ऐसे सोफा को अगर आप बार बार ऊपर नीचे करेंगे, एक तो ये बात है तो उसको हमको कंसिडर करना है. दूसरा, आप में से कोई भी अभी खड़ा होकर के, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होके वो जो चेयर है ना पीछे उसको उठाइए, एक चेयर को. अब कोई नहीं मेरी तरफ देख रहा है, हाँ चलिए उठाइए चेयर को. कितना किलो की चेयर है ये, कितना किलो की है? तो अगर ऐसी 200 चेयर्स को ले जाना है और अंदर ले आना है तो क्या होगा, कितनी एनर्जी लगेगी? और हो सकता है इधर से, अभी सब डोर्स देखिए जहां से ले जाना है, सब शीशे के बने हुए हैं, और जब थके होंगे तो हो सकता है कोई हिट कर दे और वो शीशा टूट जाए तो क्या हो जाएगा. तो कहने वाले ने कहा नहीं करना है, ये नहीं हो सकता. तो उसको सुन के दूसरे को लगा ये तो डेड यज्ञ है, लिविंग यज्ञ नहीं है, फ्रोजन है। नहीं, गलत है ये कंक्लूजन, डेड नहीं है, फ्रोजन नहीं है, लेकिन कहने वाला, उसके पास ऑप्शन थे, उसके पास ये ऑप्शन थे कि वो आपको ये सारी बात समझाए कि देखो भाई आप बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है, हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज ही ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे करते करते हो जाएगा, प्लीज आप एडजस्ट कर लो। अच्छा, उसने ही नहीं ऑप्शन की, तो फिर मैंने कहा यज्ञ में तो सारे ही ऐसे हैं, अपना प्रॉपर्टी समझ के बैठे हैं, और ये तो लिविंग यज्ञ नहीं है, स्टैटिक यज्ञ है, फ्रोजन यज्ञ है। नहीं, हम ये भी कंक्लूजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक होता है अथॉरिटी, चेयर की अथॉरिटी होती है, मैं प्रेसिडेंट हूं ना, मैंने कहा है सोफे नहीं हिलेंगे। एक होता है अनुभव की अथॉरिटी, 40 साल से 50 साल से जब हम ये कार्यक्रम करते करते अनुभवी हो गए हैं, सारा फर्नीचर संभाल के बैठे हैं, यज्ञ की प्रॉपर्टी को ढंग से चला रहे हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी को वो समय काल जो व्यक्ति का है, उस समय काल की रिस्पेक्ट करना और उसको अंडर क्वेश्चन में ना लाना, ये ज्ञान की मुरली क्या श्रीमत ये कहती है। क्योंकि अगर मुझे समझाया नहीं गया तो मैंने सोचा ये गलत कहा जा रहा है, क्योंकि समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, प्यार से बोलेंगे मैं समझ जाऊंगा, लेकिन अगर कोई 40 साल से हजारों लोगों को बैठ के समझाता रहे वो कहां जाएगा। तो इसमें उसने कहा, किसने कहा, अनुभवी ने कहा है, किसने ये बना दिया, सब सेटिंग किया, किसी अनुभवी ने किया है, तो वो हमको ज्ञान मुरली सिखाती है कि बड़ों का अनुभव का रिगार्ड करना है। ज्ञान मुरली में श्रीमत ये नहीं आएगी कि सोफे हटाने हैं या नहीं हटाने। सो इट्स वेरी मच लिविंग, मूविंग, प्रोग्रेसिंग। अब जो है मुझे फिर भी, अभी देखिए क्यों लिविंग है, ये सब जानते हुए, समझते हुए, रिगार्ड करते हुए फिर भी मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी है, ये सिचुएशन हजारों में से वो सिचुएशन है जब तो चेयर हटानी ही पड़ेंगी। तो संविधान जो है, अब भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कब बना था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को पता है? 1951 में उन्होंने लिखा था, अप्लाई 52 से किया था, 26 जनवरी 51 से, चलो जब भी हुआ लगभग कह दीजिए। तो अब जब से वो संविधान बना, तो जो भी थोड़ा भी लेजिस्लेशन में काम करते हैं उनको पता होगा, बनने के बाद से 2013-14 तक कितनी बार उसमें बदलाव किए गए, कितनी बार अमेंडमेंट्स की गई, एडिशन किया गया, कितनी बार, एनीवन नोस? हाथ खड़ा करें, बोले नहीं, यस प्लीज, मोर देन 300 टाइम? नो, लगभग 100, ये थोड़ा 93 टाइम्स। अच्छा, अब जो है इसमें एक्यूरेट है, 93 के बाद कुछ नया हुआ नहीं, जब होगा तो लगभग बोलेंगे। तो अब मुरली 1936 से चली है, बाबा ने उसमें कहा है प्यार से रहो, रिगार्ड करो, रिगार्ड दो सबको, बड़ों का रिगार्ड करो, यज्ञ की रक्षा करो। तो मुरली में अमेंडमेंट्स कितनी बार हुए? कुछ कुछ चीजें जो हैं वो उनको थोड़ा सा माइनस किया गया, कटिंग हुई है, अमेंडमेंट्स नहीं किए हैं। कटिंग क्या हुई है? ऐसे भी नहीं कि कटिंग हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो उस समय की परिस्थिति अनुसार कही गई, जैसे विनाश की बातें, कुछ बिल्कुल ऐसी बातें जैसे कोई लीगल थ्रेट मिला हुआ है वो थोड़ा बहुत उसको हटाया है, कुछ शब्द, कुछ एक लाइन, बाकी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो वो मुरली जो है फ्रोजन नहीं है। लेकिन अभी फाइनल जो बात हम करना चाहते हैं इस विषय में, हम मुरली की बात को रेफर करके कि ये श्रीमत कहती है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो हम मुरली के प्रति रिगार्ड कम कराते हैं। तो मुरली बदल नहीं सकती, श्रीमत बदल नहीं सकती, लेकिन एक टर्म है जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। व्याख्यान जो है उसके अंदर उनका लचीलापन, बड़े को रिगार्ड देना है लेकिन बड़ा जो है बाबा ने कहा वो भी रिगार्ड दे सबको। हाँ, हमेशा हम देंगे तो सेफ रहेंगे। तो व्याख्यान जो है वो ऐसे नहीं है कि जैसे आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो वही कहा है बाबा ने, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस मीन उनके समझने में, उनको लागू करने में लचीलापन है, मार्जिन है कि हो सकता है इस व्यक्ति ने इस भाव से समझा है, लेकिन गाड़ी रुक रही है उसका कोई दूसरा भाव भी देख लीजिए। जब मैं पहली बार सेंटर पर आके चपाती बनाई थी, और जो हमारे लौकिक घर में चपाती बनाते थे, तो उसमें जब बन गई तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा वो पैन पे होता था उस पर घी लगाते थे। तो सेंटर पर जो थे वो जो निमित बने हुए थे, उन्होंने जब आके देखा मैंने उस चपाती के ऊपर में उधर से घी लगाया है, तो आते ही कहा, अरे ऐसे नहीं चपाती पे घी लगाते, चपाती पर इस तरफ घी लगाते हैं। अब वो बड़े ने जो कहा वो श्रीमत है, ऐसा सिखाया जाता है ना। नहीं, अगर मैं ये सोच के कहूं कि ये ऐसे श्रीमत देते हैं मैं तो यहां नहीं रहूंगी, नहीं। लेकिन ये श्रीमत नहीं है, ये इनका अपना जीवन का अनुभव है। इन्होंने अपने जीवन में, अपने घर में इस तरह से चपाती बनाना सीखा है। इनके पास ऑप्शन थी, ये आकर के यहां पर मुझे कह सकते थे, अरे आपने यहां क्यों लगाया, अच्छा हम तो यहां लगाते हैं। तो फिर मैं कहती, अच्छा आपको ऐसे अच्छा लगता है, मैं भी ऐसे लगाऊंगी। तो हम एडजस्ट करते हैं एक दूसरे की टेस्ट को, लेकिन जब हम ऐसे कहते हैं ना ऐसे नहीं हो सकता, तो हम लिविंग यज्ञ को स्टेग्नेंट बनाते हैं। तो यज्ञ स्टेग्नेंट नहीं है, यज्ञ फ्रोजन नहीं है, मुरली कोई रूल बुक ऐसे नहीं है कि आप उसको रेफर करके किसी भी प्रकार से अपने जीवन के अनुभव को श्रीमत का नाम दीजिए। तो इसलिए हम जब ये समझ जाते हैं तो हम कभी भी ऐसी परिस्थिति में हम अपने को शेक नहीं करते, हम समझ जाते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। और जो एक बात मन में आ रही है आपके साथ में, क्योंकि स्पार्क ग्रुप है और मुझे पता है आप लोग बहुत होमवर्क करते हैं, तो होमवर्क जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी और लिविंगनेस जो है, इसका मतलब ये है कि हमेशा बदलने के लिए मार्जिन है, इम्प्रूवमेंट के लिए मार्जिन है, चेंज होने के लिए मार्जिन है। लेकिन रिजिड मीन्स रिजिड माना नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज। तो अब हम जिस प्रकार से अभी एक घंटे में हमने जो बातचीत की है, तो आप क्या कहेंगे, यज्ञ फ्लेक्सिबल है, सिस्टम फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल है, वेरी गुड। अपने आप ले ताली बजाइए। अगर आप ये कंक्लूजन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अभी ये सिस्टम है, बॉडी ये सिस्टम है। इस बॉडी के अंदर में अभी मैं यहाँ इस हाथ को यहाँ रखा है और इस हाथ को मैं यहाँ भी रख सकती हूँ। ये फ्लेक्सिबल है। अगर मैं कहूँ ये हाथ डिस्टर्ब कर रहा है, ये दोनों एक तरफ होते तो ज्यादा बेटर होता। ये फ्लेक्सिबल है। तो कोई भी सिस्टम अगर फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी हायर मिशन की तरफ नहीं जा सकता, हायर पर्पस को सॉल्व नहीं कर सकता। बिकॉज टू मच फ्लेक्सिबल, फिर सारे आके कहेंगे, वो जो 1 से 5 साल वाले भी है ना, उनको माइक देंगे, वो भी कहेंगे मैं समझता हूँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक आत्मा है जो 3-4 साल हुए है ज्ञान में आई है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो वो देखा उन्होंने, हम सब ने तो बाबा से ये सब लिया है। अब उन्होंने देखा क्योंकि रथ की तबीयत खराब है और बाबा आते हैं, तो वो कहता है कि ये रथ है ना बाबा का, तो कितनी तबीयत है और मुश्किल होता है रथ को। जो बड़े बड़े लोग होते हैं दुनिया में, प्रेसिडेंट होते हैं, तो हरेक के पास में 3-4 गाड़ियां तो होती है ना। तो बाबा के पास एक ही गाड़ी है क्या? तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी भी कमेंट सुननी पड़ेंगी। उसको कहेंगे ना आपकी क्या राय है, उसको स्पार्क ग्रुप में डालेंगे ना, वो कहेंगे कि बाबा के लिए नई गाड़ी ढूंढो। सो कैन बी फ्लेक्सिबल, ये हमारा है कार्य। बाबा के लिए गाड़ी ढूंढना हमारा कार्य, वो निराकार के लिए कार ढूंढना हमारा कार्य नहीं। तो फ्लेक्सिबल किस चीज में है और रिजिड किस चीज में है, टू आइडेंटिफाई दैट इन द होल सेटअप, ये है होमवर्क। आप सबके लिए होमवर्क है कि हमारा जो कुछ भी चल रहा है, हमारी जो सुबह की क्लास की टाइमिंग है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्थ पोल में सेंट पीटर्सबर्ग जो है नॉर्थ पोल से 3 कदम दूरी पर है, 2.5 घंटा फ्लाइट में लगते हैं। नॉर्थ पोल मतलब 6 मास अंधेरा और 6 मास लाइट है। 6 मास सूरज ही नहीं निकलता है नॉर्थ पोल में, मतलब उस तरफ से मूवमेंट होती है। अभी सेंट पीटर्सबर्ग में भी 10 बजे 11 बजे के बाद एक किरण सूरज की आएगी, कितना अंधेरा होता है। अब एक जो एस्पेक्ट है, मैं अभी जो होमवर्क के लिए बात है, टाइम ऑफ द क्लासेस, ये जो यज्ञ है पूरे विश्व के अंदर में, क्लासेस का टाइम रिजिड है फ्लेक्सिबल है? उत्तर मत दीजिए, लिखिए, सोचिए और उस उत्तर को समझिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो कल को कोई आके कहेगा नो, इन सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया हम मुरली क्लास 12 से पहले शुरू नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि लाइट ही तब आती है। कर सकते हैं सब, होमवर्क है ना, वहां 7 बजे क्लास शुरू होते हैं जैसे यहां होते हैं। अच्छा, अब इसको सोचिए कि क्या ये फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। दूसरा, बाबा जब थे, यज्ञ जब था, सेवाएं नहीं थी, तो एक बार मुरली होती थी, फिर बाबा शाम को मिलते थे। तो ये है क्लासेस, दिन में कितनी बार हम क्लासेस कर सकते, मुरली क्लास कर सकते। क्या सुबह की मुरली क्लास और शाम की मुरली क्लास एक ही श्रीमत है, या श्रीमत है सुबह ही मुरली सुननी है? ये फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? आंसर नहीं दीजिए, सोचिए सब बातों को। क्योंकि एक श्रीमत और दूसरे श्रीमत, वो दोनों कंट्रडिक्टरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। श्रीमत ये भी कहती है जैसी भी स्थिति हो कम से कम मुरली सुनो तो सही, कभी भी सुनो। एक श्रीमत कहती है सुबह उठ के मुरली सुनो, तो आर दे कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉम्प्लीमेंट्री? कि अगर नहीं कर सकते तो चलो शाम को सुनो, ऐसा ना, तो लेकिन सोचना है। तीसरी बात है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड मतलब जो हम क्या पहने, तो वाइट ड्रेस है ना हमारी सबकी, अब साड़ी है। अच्छा अभी वहां पर, अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल वहां के दे रही हूं क्योंकि वो थोड़ा सा अंतर वाला है स्थान, लेकिन क्या मतलब है इसका कि क्या हम फ्लेक्सिबल है, रिजिड है इसमें। जब विंटर सीजन होता है 6 मास -30 की जो स्नो होती है, -20 की, तो सड़क पर जब आप निकलते हैं तो ऐसी धरती नहीं दिखाई देती आपको। 5-6 मास ये धरती नहीं दिखाई देती है, बर्फ ही बर्फ है, और वो भी काली, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जाता है तो उसपे सब गंदगी आती है। तो इतना सा रास्ता आपको साफ मिलेगा, वो गवर्नमेंट के जो ट्रक हैं वो साफ करके जाते हैं, बाकी कहीं चलने की जगह नहीं होगी, आपको वहीं से ही कहीं कैसे ना कैसे करके जाना है। अच्छा अब आप देखिए, हमारी मैं नहीं खड़ी होती, कोई बहन खड़ी हो जाए। हाँ आप खड़े होंगे कल्याण वाले बहन जी, आइए वेलकम करिए, तो कल्याणकारी है, कल्याण में रहते हैं। अभी देखिए, सिर्फ बहने ही देखिए, भाई भले रिलैक्स रहे। अभी साड़ी है, ये साड़ी पूरी है, अभी आपको यहां तक शूज डालने हैं, यहां तक शूज डालने हैं, और उसके बाद 3 कोट डालने हैं, फिर उसके बाद आपको चलना है, उसके बाद कुछ सामान भी लेना है, आप कितना करेंगे? करेंगे, चल सकते, इतने बड़े बड़े मोटे शूज डालने और चलना है, क्योंकि इतना ठंडी है बाहर, कोई ये गर्म वो ट्राउजर्स डालने से कुछ नहीं काम होने वाला है वहां पर। तो अभी ये हमारी ड्रेस है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, और कहां तक फ्लेक्सिबल है और कहां तक रिजिड है, तो उसमें एक एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि आप जब होमवर्क करेंगे, थैंक यू, प्लीज बताओ, बाबा ने बोला है कि बच्चे आपकी जो ड्रेस हो, पहली बात श्रीमत जो है, साड़ी डालो या सूट डालो या पैंट डालो वो नहीं प्रॉब्लम, लेकिन आपकी जो ड्रेस है बच्चे, सिर्फ हाथ, चेहरा और पैर, तो वो तो शूज डालेंगे तो बाहर जा रहे हैं तो पैर तो कवर हो जाएंगे, तो हाथ ग्लव्स डालेंगे तो हाथ भी कवर हो जाते हैं, और मुंह भी यहां तक ढकना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो 40 में अगर आप -40 में टमाटर को रखो तो कैसा हो जाता है, तो आपकी अगर नाक -40 में तो पत्थर जैसी हो जाती है, ऐसे आवाज आती है, तो वो भी ढकना पड़ता है, ये भी ढकना पड़ता है, तो बात वो नहीं है, लेकिन हम अगर उस समय ये सब ड्रेस में सारा समय रहते हैं तो हम कोई काम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ गाड़ी होगी, अब गाड़ी के लिए भी जब तक बाबा के सेंटर बड़े हो, साधन आए, गाड़ी खरीदो, या फिर और लोग जब तैयार हो जो बाहर रहते हैं सेवा करें, तो ऐसे ऐसी बातें जिसको कहते हैं हम ड्रेस कोड, फ्लेक्सिबल है रिजिड है कहां तक है। उसके बाद फूड, भोजन, उसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे आपको शुद्ध भोजन खाना है, ये तो पक्का है ना। अच्छा शुद्ध भोजन खाना है, जब बाबा ने कहा था उस समय इंडिया में ही सेंटर थे, फॉरेन में तो कोई सेंटर नहीं थे। अभी बाबा के जो बच्चे हैं वो एंटार्क्टिका तक पहुंच गए हैं, एंटार्क्टिका तक है, और वहां पर सब्जी तो दिखाई भी नहीं पड़ती, और सब्जी का प्राइस जो है वो दूसरे भोजन से 4 गुना ज्यादा है, और इतने तो पैसे कहां से लाएंगे। तो अच्छा, तो फिर रशिया के लोगों के लिए, एंटार्क्टिका के लोगों के लिए परमात्मा की श्रीमत है कि आप कभी कभी, ऐसा है। तो फूड, तो क्या फ्लेक्सिबल है क्या रिजिड है, ऐसे ही प्यूरिटी, प्यूरिटी का एस्पेक्ट जो है, क्या प्यूरिटी में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डिग्री में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत किसी में कमी है पवित्रता के डिग्री में कमी है, वो यहाँ पर सेवा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। झाड़ू भी नहीं लगा सकता बेचारा, बर्तन भी नहीं साफ कर सकता है। वो तो कर सकता है, लेकिन अगर वो कहता है मुझे मुरली सुनानी है, तो मुरली सिर्फ पवित्र आत्मा, जिसकी पूरी पवित्रता में विश्वास है, धारणा है, संयम है, कर्म इंद्रियां कंट्रोल है, मुरली की सेवा। ऐसे नहीं कि रोज दादी क्यों सुनाती है, मुझे क्यों नहीं कहते सुनाने के लिए, कोई आके कहे कि मैं तो बड़ा अच्छा स्पीकर हूं, नहीं। तो जितनी ज्यादा पवित्रता का अनुभव, उतना ज्यादा मुरली को हाथ में लेने के अधिकारी। फिर फाइनल है, अभी है तो बहुत सी बातें, लेकिन इसमें मैंने ये 6 बातें आपके लिए सिलेक्ट की हैं। मुरली क्लास का फॉर्मेट अभी आप देखते हैं कि मुरली होती है, उसके बाद में थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट होती है। आजकल क्योंकि ज्यादा संख्या है तो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं बस। तो मुरली क्लास का जो फॉर्मेट है, फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? इतने सालों से वही चलता आ रहा है, कुछ उसमें थोड़ा चेंज करें, कुछ बीच में ऐसी ऐसी बातें करें, पॉसिबल और इम्पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो ये सोचना है। तो आप जब ये होमवर्क करेंगे, तो जो भी आपके निमित्त हैं, रमेश भाई साहब के नाम से आप उसको लिखिए, अपने समझ से देखेंगे किसका किसका कैसे अभी अच्छा मनन चलता है। इसके अंदर में हमको ऐड करना है कि अगर इसमें से आपने ये डिस्कवर किया कि ये जो है फ्लेक्सिबल है, अच्छा अब जो वो फ्लेक्सिबल है अर्थात उसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है, जैसे ड्रेस है, आपको ये लग रहा है फ्लेक्सिबल है, नहीं करेंगे तो बेचारे जाएंगे कैसे सड़क पर, तो क्या मैं खुद अपने आप एक अकेली मैं अकेले मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे ये डालना है, या इसमें आम सहमति, ब्राह्मण की, बड़े की, कोई एक की सहमति, अनुमति और आशीर्वाद? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको चेंज करने के लिए भी सिस्टम होता है, एक व्यक्ति तो नहीं कहेगा मैं करूंगा। तो कौन सी बातों के लिए सहमति अनुमति की से हम फ्लेक्सिबल हैं और कौन सी बातें रिजिड हैं, अर्थात उसमें चेंज नहीं हो सकता? तो ये आइडेंटिफाई करने से हम अपने यज्ञ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। बातें बहुत हैं और भी कुछ, क्योंकि ये तो पूरा 4 दिन की रिट्रीट थी जब हमने पिछले साल किया, अभी आपका ये एक सेशन है, तो आपने बहुत प्यार से बैठे सुना, थैंक्स। दो शब्द हैं जो प्रोजेक्ट के लिए कहना चाहेंगे। 2016 है, अभी चल रहा है, और 2016 में 16 कला संपूर्ण अगर हम बन जाएं, तो आपका क्या विचार है? क्या विचार है, मैं बन जाऊं कि आप सब भी, हम सब? तो 2016 के लिए दिसंबर 2015 में जब हमने मीटिंग की सब भाई बहनों की, तो ये विचार निकला कि हम सारा साल अपने लिए और ब्राह्मणों के लिए और बाहर की सेवा के लिए जो कुछ भी काम करें उसके आसपास के टॉपिक से करें। तो मैं जब आई थी तो हमने एक सब इसकी वीडियो के ऊपर बनाया था, वो अभी ले आना भूल गए हैं। तो इसमें एक फाइल है जो श्रीकांत भाई के पास होगी, बहनों के पास भी होगी जो को टीम में है। शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया है 2016 के लिए, वहां पर आप लोगों को अगर ये करना होगा, पसंद आएगा, अपने लिए करना चाहेंगे, ब्राह्मणों के लिए कभी करना चाहेंगे, तो इसकी जो कॉपी है आप ले सकते, समझ सकते, क्योंकि इसको अभी पूरा डिटेल में बताना संभव नहीं है। लेकिन हम इसको इसलिए कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि जब हम 16 कलाओं की बात करते हैं तो हमारी जो सबसे बड़ी मान्यता है कि मनुष्य आत्मा कोई भी कर्म को एक्यूरेट और अट्रैक्टिव तब कर सकती है। तीन चीजें हैं वैसे तो, एक्यूरेट, अट्रैक्टिव एंड बेनिफिशियल, और कल्याणकारी हो, एक्यूरेट हो, अट्रैक्टिव हो और सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा कर्म करना उसको कला कहते हैं। ये बाबा ने 1981 की मुरली में कहा है, वो मुरली भी यहाँ पर अटैच है। तो इसमें चार पांच चीजें हैं। प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले होता है विजन, फिर होता है मिशन, कैसे कैसे हम उसको अटेन करेंगे, फिर होता है उसकी कार्य अवधि, एक साल की अवधि है, 2016 में हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि 16 कला की बात 2017 में आप करेंगे तो कैसा लगेगा, मैच नहीं करता। करनी कर तो सकते हैं, लेकिन 16 में 16 कला संपूर्ण बनना तो कैची है काफी। अच्छा, उसके बाद इसमें एक क्लास है जिसके अंदर में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हम कलाओं की बात को कैसे ला सकते हैं। तो कौन कौन से भाई बहने हैं जिनको पता है, जगदीश भाई साहब की एक किताब लिखी हुई है 16 कला वाली, तो वो अक्सर किताब खरीद लीजिए। 600 किताब लिटरेचर डिपार्टमेंट में नहीं है, 400 है। मैंने पूछा था कि मैं सबको अगर आज गिफ्ट दे दूं तो कहते 400 है, तो आपके पास जिसके पास है वो नहीं खरीदे, नहीं है तो जरूर खरीदे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो समझ आएगा और अच्छा। फिर इसमें एक और चीज है, 16 कला की लिस्ट है और वो लिस्ट इस प्रकार से उसकी भाषा है जो बिल्कुल आप ज्ञान को लौकिक अलौकिक दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। श्रीकांत भाई आएंगे एक सेकंड। इसको पकड़ो, ये थोड़ा सा ऐसे ये इस पे दिखा देंगे। तो एक जो फॉर्म है कि हम सब सेंटर पर जो भी भाई बने हैं, बीकेज हैं, सेंटर वासी हैं, तो उसको आप हिंदी में करना चाहें हिंदी में कर लीजिए, कि वो हर भाई बहन ये फॉर्म लेता है और अपना विचार लिखता है उसमें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जैसे आप करते हैं ना, शॉर्ट मीटिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, किस किस प्रकार से हम करें। तो क्लोज नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं जैसे हमने डिसाइड किया आप भी वैसे करिए। आप अपने सेंटर की कैपेसिटी के अनुसार से, संख्या के अनुसार से, ये सारा फॉर्म जो है कोई भी बीके भर के आपस में राय कर सकते हैं। फिर एक क्लास है, ये पूरी क्लास में डिस्क्राइब किया है हम एक एक कला को कैसे विस्तार में लाएं। सॉरी, और ये जो है गिफ्ट है, ये क्योंकि नए साल से शुरू किया था तो इसमें फर ट्री है, आपको पता है फॉरेन में नए साल पर फर ट्री सजाया जाता है, क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं, इसको यहां से भी पकड़ी। तो ये 16 कलाएं सब इस ट्री पर लिखी हैं, तो इसका भी ये पेन ड्राइव सब इनके पास है, ये सब पेन ड्राइव में इनको मिलेगा और बहनों को भी मिलेगा। तो 11 कॉपीज अभी है, आप लोग जैसे भी लेना चाहें, और अगर जिनको भी ये कॉपी चाहिए वो और भी मिल सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर और दिन हैं तो ये सब आपको बताएंगे। तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।